Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आजकल हम देखते आ रहे हैं कि छोटी या बड़ी कोई ना कोई बीमारी से हर व्यक्ति आज ग्रसित है। कहीं ना कहीं हम सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से कोई बीमारी का कारण बनता जा रहा है। हमें ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसी कुछ बीमारियां जिसके बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उनमें से एक बीमारी है OCD। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से हम बाहर निकल सकते हैं और लोगों को अवेयर करा सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति, नमस्कार।
डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि किस तरह से OCD ये बीमारी हमारे लिए हानिकारक है। हमने उसके बारे में जाना कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से ये बीमारी होती है। हमने ये भी जाना कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इसे क्योर भी कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या कोई और भी टेक्निक्स है जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में कवर नहीं किया?
हाँ, बिल्कुल। जैसे ना हमने, आप देखिए, पिछले एपिसोड में हम बीच में, समय की मर्यादा थी तो बीच में रुके थे, वो पूरी एक टेक्निक हम डिस्कस कर रहे थे और बहुत ही पावरफुल ये टेक्निक है कि जिसपे पूरी किताब लिख सकते हैं, कि जो है कि रिकग्नाइज। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि यह अवेयरनेस आए, सतर्कता आए कि भी मुझे तकलीफ है, मैं ज़्यादा ही हाथ धो रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही लॉक को चेक कर रहा हूँ या और कोई भी बात। शुरुआत में उसे रोको तो रोकना बहुत इजी है, तो पहली बात तो रिकग्नाइज है ना।
Correct.
फिर कहते री एवेल्युएट, इवेल्युएट जो करते ना, फिर से करो कि पहले तो नहीं था, अभी कैसे आया
जी,
और लोग तो नहीं करते, मैं कैसे करता हूँ, हमने सारी चर्चा की है इसकी
जी।
फिर तीसरा है री एट्रीब्यूट।
ओके,
ऐसे आमतौर पर तो हम ये कहते हैं कि भी दूसरों को दोष नहीं दो। आप कहीं देखेंगे मेरे लेक्चर्स भी, तो हम ये कहते हैं कि भी खुद जिम्मेवारी लो, दूसरों को जिम्मेवार नहीं ठहराओ। परंतु यहाँ पर दूसरों को, मतलब व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराना है, हमें अपने ये जो ऑब्सेशन है भाई बार बार हाथ धोना जो भी है, तो उसके लिए अपने ब्रेन के केमिकल्स को जिम्मेवार ठहराओ।
Okay.
कि कुछ भी हुआ मेरे ब्रेन के केमिकल डिस्टर्ब हो गए। हमने पूरी चर्चा की है कि एमेगडेला एक फिल्टर है। जो एमेगडेला है वो फिल्टर अभी ठीक से काम नहीं कर रहे।
okay.
भाई 1000 में से 999 तो उसने एक बार हाथ धोया, ठीक है, वो एमेगडेला बोलता है कि परफेक्ट आपने हाथ धो लिए, लेकिन वो फिल्टर ठीक से काम बोलता हाथ नहीं धोए, नहीं धोए पूरा साबुन खत्म कर देगा, है ना, चमड़ी निकल जाएगी, तब तक वो हाथ धोते ही जा रहा है। क्योंकि अमेगडेला बस नहीं बोलता है उसको।
okay.
कि भी अभी नाउ नो इट्स इनफ, तुम्हारे हाथ धुल गए, वो सिग्नल नहीं आता है,
कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि हमें जो कार्य किया है वो पूर्ण किया है।
हाँ, कि मतलब मेरे हाथ धो लिया तो मैंने पैसे गिन लिए, लॉक बंद हो गया,
करेक्ट,
या तो गैस बंद हो गया, है ना, ऐसे वो जो भी है।
डॉक्टर साहब, क्या वो जो वो कार्य करते हैं उसे भूल जाते हैं, या मतलब एक बार कर लिया मैंने और मैं भूल गया, और फिर दूसरी बार किया मैंने भूल गया, ऐसा नहीं होता?
नहीं, भूलना नहीं, उनको जैसे कि तसल्ली नहीं होती।
हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं होता।
जैसे भी कई बार कपड़े आजकल तो नॉर्मल है, उसे तो OCD नहीं है
जी जी,
कि भी कपड़े पहनेंगे मैंने ठीक पहने या नहीं, आईने में 10 बार देखेंगे, वो नॉर्मल है,
करेक्ट,
कि भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। परंतु OCD में एक्सेसिव ही हो जाता है, खुद भी रियलाइज कर दे कि हमने ज्यादा ही कर दिया।
ओके.
तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट करना है, जो कारण देना है, वह अपने ब्रेन के केमिकल्स को दो, अपने को नहीं दो,
करेक्ट,
या जैसे मैंने कहा एमिगडाला को दो कि भाई मेरे एमिगडाला में गड़बड़ है, मैं नॉर्मल हूँ, है ना, वो सिग्नल नहीं दे रहा है मुझे, परंतु मुझे पता है। जीवन में तो पेशेंट को ये भी बोलता हूँ कि ये OCD हो गया, एक्सेप्ट करो, और ये पक्का है ना, अभी इस पर नहीं जाओ कि हार्ट ठीक से धुले या नहीं, लॉक ठीक से बंद हुआ या नहीं, पैसे ठीक से गिनती हुई या नहीं, उस पर आपको नहीं जाना है। आप कुछ नियम बना लो कि 2 बार गिनती किए बस, समझो 2 बार लॉक को चेक किया इनफ, है ना, 1 बार साबुन से हाथ धोए, 1 बार पानी डाला बस। अब उसके क्या बोलेंगे विश्लेषण में नहीं जाना है, कि ठीक है या नहीं, अभी भी अड़ा कि नहीं, साबुन वहां लगा था उसके जम से यहाँ लग गए फिर से गंदा हो गया, वो गड़ वो झंझट में नहीं जाना है, ओसीडी में वो सहारे में वो जाता है व्यक्ति, तो खुद समझता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, तो भी उसमें हमको नहीं जाना ऐसे, तो उससे भी फायदा होता है अगर ये पक्का कर लेना दो बार हाथ धोया इनफ, सेटिस्फेक्शन हो या नहीं हो मुझे बाहर आना है। जैसे ये लोग है ना वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते हैं, तो भी उनको कुछ बोलते कि भैया फिक्स कर दो कि 15 मिनट में स्नान करके बाहर आना है कुछ भी हो जाए, है ना, इससे ज्यादा ये चीज को नहीं करना है मुझे।
करेक्ट।
अब कुछ लोग सबको नहीं मिल क्योंकि उनको तो अंदर में इतना पावरफुल मैसेज होता है ना, ये चीज हेल्प नहीं करती है।
पर अगर एक डॉक्टर बोल रहा है तो शायद वो चीज को तवज्जो देंगे
कि उनको पक्का कराते हो, जो टेक्निक्स भी हमने आगे डिस्कस की है ना,
हाँ जी,
वो जो फायर टेक्निक आदि उससे भी पक्का कराते कि बस मैं ये मैंने डिसाइड कर लिया है, इतना हुआ भी लॉस हुआ तो हुआ
जी।
सपोज मैं उनको ये बोलता हाथ गंदे रह गए तो रहेगी क्या होगा, बीमार होंगे,
करेक्ट,
इन्फेक्शन होगा, होने दो वो इजी है, कुछ हो गया मुझे सपोज लूज मोशन हो गया इसके कारण हाथ गंदे रह गए तो उसको ट्रीट करना इजी है। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना वो ज्यादा तकलीफ दे रहा है,
करेक्ट,
है ना, तब भी कुछ लोग सब नहीं मान पाते अगर अंदर में वो पक्का कर ले तो उसको हो सकता है, तो इस प्रकार से क्या करना है, रीएट्रिब्यूट करना है
जी।
अब नेक्स्ट स्टेप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है रीचैनलाइज,
ओके,
कि वह सारी ऊर्जा को आप अब चैनलाइज करो अलग जगह पर। फॉर एग्जाम्पल भी कईयों में मैं जो ओसीडी के रूट कॉज पे जाने का ट्राई करता हूँ जब भी थेरेपी करते हैं ना, तो कि जैसे ओसीडी का एक रूट कॉज माना गया, जैसे उसके पर 100% प्रूफ नहीं है, मैंने आगे भी कहा है कि जो साइकोथेरेपी की सारी थियोरीज है या तो जो साइकोलॉजी की थियोरीज है उसमें सब लोग एग्री नहीं करते, फिर भी वहाँ कहीं ना कहीं कुछ मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के भी फाउंडिंग फादर है सेगमंड फ्रॉइड, कि जिसको आज आमतौर पर इतना लोग वो तवज्जो नहीं देते उन्होंने जो कहा, परंतु मैं देखता हूँ कि उन्होंने कहा थोड़ा सा एग्जागरेट हो गया सिर्फ, अदरवाइज उनकी बातें सच भी है। तो उन्होंने ये कहा है कि ओसीडी के पीछे कारण कहीं ये है कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अपवित्र हूं, या तो कहीं गिल्ट कॉम्प्लेक्स है कि मैंने कुछ ये गलती कर दी, है ना, और कहते हो बचपन में भी हो सकता है, बचपन से ही अगर कोई बच्चे में ये डाला गया है कि तू गलत करता है, तुझे नहीं आता है, तू बुरा करता है ना
जी।
तो अगर वो पहले से उसमें गिल्ट कॉम्प्लेक्स आ गया तो ये भी हो सकता है कि 15-20 साल वो नॉर्मल रहे और फिर 19 साल का हुआ 22 साल का हुआ कुछ घटना हुई वो एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाएगी और ओसीडी का रूप ले लेगा, है ना। तो अब रीचैनलाइज कहाँ करना है कि मैं पवित्र हूं, है ना, मैं उनको पक्का कराता हूँ अलग अलग रीति से
जी।
कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, को थोड़ा सा उनकी बात को समझ के भी बताते हैं कि भी अगर दुनिया में 1000 लोग है तो शायद उसमें आपका 50वें नंबर है, दूसरे 950 जो है वो आपसे बुरा करते हैं कुछ, है ना, गलत करते हैं,
कहीं ना कहीं आप उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं।
हाँ, एक तो सेल्फ एस्टीम एक बात है ना, और दूसरा ये कि भी तुम शुद्ध हो, है ना, तुम अच्छे हो। अभी आपने कहा सेल्फ एस्टीम वह है कि तुम अच्छे हो,
करेक्ट,
वो बात भी ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वो सेल्फ एस्टीम का हिस्सा है कि तुम पवित्र हो, तुम शुद्ध हो, तुम अशुद्ध नहीं हो, तुमने कोई गलती नहीं की, है ना, तुमने कोई गिल्ट नहीं की
जी।
ये बहुत बड़ा है गिल्ट कॉम्प्लेक्स, वो बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकता है,
करेक्ट,
है ना। उनको ये कन्विंस करते हैं कि भाई आज दुनिया में देखो क्या क्या होता है, उसकी कंपैरिजन में आपने शायद कुछ यहाँ 19-20 किया लेकिन वो कुछ भी नहीं है,
करेक्ट,
है ना। सो वो गिल्ट को खत्म कर दो, चाहे तो उसके लिए और कुछ करो, समझो कि भी बचपन में कोई कहे कि भी मैंने झूठ बोला तो अभी आपको अंदर में अभी खटकता है
जी।
तो उसको ठीक करने के लिए चाहे तो आप लोगों को एजुकेट करो, भी 1,00,000 लोगों को एजुकेट करो कि भी क्यों झूठ नहीं बोलना है,
करेक्ट,
है ना। झूठ बोलेंगे तो कभी ना कभी व्यक्ति फिर पकड़ा जाता है, है ना, मतलब कितनी भी कोशिश करे,
बिल्कुल,
है ना, तो वो नहीं करो ऐसे, वो बात है। हाँ,
डॉक्टर साहब, जितना मैं समझ पाई हूँ इस बीमारी को, कोई भी चीज को अगर बार बार करते हैं रेपिटेटिवली तो वो उनके लिए भी हानिकारक है और उनके उनको ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है
ना, कि रीचैनलाइज किया कि भी मैं शुद्ध हूँ
जी,
है ना। और फिर अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप है रीगेन।
ओके,
कि ये पक्का करो कि नाउ आई एम नॉर्मल, मैं हर आम व्यक्ति की तरह ही बन गया। भी मेरे आसपास जो लगे कि भी मेरी माँ एक ही बार हाथ धोती है, मेरे पिताजी एक बार धोते, मेरे पति एक बार धोते, मेरे डॉक्टर एक बार धोते, बस उतना ही मुझे करना है
जी,
है ना। मैं अभी उनमें से ही एक हूँ।
करेक्ट,
मुझे अपने ब्रेन के केमिकल्स को जो करना है वो करने दो, है ना। मैं वह उसको मानने वाला नहीं हूँ। वो अच्छे से करे ना तो रिगेन कर सकता है, और उसमें फिर मेडिटेशन भी हेल्प करता है।
करेक्ट,
ये सारे प्रोसेस में अगर वो रेगुलर मेडिटेशन करे तो रिकॉग्नाइज करना उस प्रोसेस में एक तो मदद मिलती है।
Correct.
क्योंकि है ना उनकी जो कि सतर्कता बढ़ जाती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है।
करेक्ट,
है ना। फिर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट भी करना, जो मैंने कहा ना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन उनको तो एक्सेप्ट नहीं होता, कहते मैं तो अशुद्ध हूँ, मेरे जैसा तो बुरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
करेक्ट,
है ना, ऐसा कईयों को होता है। तो जब वो मेडिटेशन करता है ना तब ऑटोमेटिक ही आता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
okay.
हाँ, वो हेल्प करता है। मैंने भी जब ब्रह्म कुमारी इसको 76 में मैंने स्टार्ट किया,
हाँ जी,
तो बस थोड़े समय में समझो 6-7 महीने के बाद मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ कि हम औरों को भी सिखाए,
हाँ जी,
ना। तो भी औरों को भी फिर बहने बोलती थी भी सेंटर पे, अभी आजकल तो भी बहुत विस्तार हो गया तो 1-to-1 नहीं सिखा पाते, साथ में सिखाते, लेकिन उस समय 1-to-1 सिखाते थे। तो एक बस कंडक्टर मेरे पास आया,
हाँ जी,
तो उसको मैंने योग की बातें बताई, किसने कहा भी कि बहुत शराब पीता है, सारा दिन शराब पीता है, है ना, और जाता ही नहीं है, ड्यूटी पे ही नहीं जाता है सर, तो उसका जॉब भी चला जाएगा, है ना। मैंने उसको कोर्स कराया, थोड़े दिन आया भी, फिर तो शायद उसका कांटेक्ट टूट गया
जी।
शायद 3-4 महीने के बाद एक बार मैं बस में जा रहा था,
हाँ जी,
तो फिर मैंने उसको पहचाना नहीं, मैंने कहा टिकट, तो कहा साहब आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो मैंने कहा क्यों, तो कहते आपको मालूम नहीं है कि भी आपने मुझे वो बताया था ना, मेरी शराब छूट गई।
अच्छा,
बस में भी लोग नहीं थे तब, ज्यादा थोड़े ही लोग थे, तो भी मेरे पास में बैठा और हम चर्चा करने लगे। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हेल्प की, तो कहते सर आपने वो सब बोला था ना, मेरे अंदर में एक बात फिट हो गई, मैंने ज्यादा तो नहीं किया है, को 7 दिन आपके पास आया, फिर मैंने थोड़ा किया होगा, अभी मैं भी अपने व्यवसाय में बहुत बिजी हूँ, मेरी शिफ्ट ड्यूटी होती है, घर की भी बहुत जिम्मेवारियां हैं, मैं इतना तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उन दिनों जो मैंने थोड़ा बहुत किया उससे मेरे अंदर में एक चीज बहुत डीप बैठ गई है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। उसने कहा कि मैं पवित्र हूँ तभी शराब को नहीं छू सकता हूँ। उसने कहा जिस दिन मेरे में ये आ गया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ बस मेरी शराब छूट गई।
करेक्ट,
है ना, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि शराब छूटती नहीं है।
करेक्ट, इससे हमने ये सीखा कहीं ना कहीं कि एक पॉजिटिव थॉट से, अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं।
और दूसरा ये भी कि भी योग से कैसे आता है।
करेक्ट,
कैसे भी ये ज्ञान में पावर है कि आत्मा में अंदर बैठ गया कि मैं पवित्र हूँ।
डॉक्टर साहब, जितना मैं इसको समझ पाई हूँ, मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग थॉट हम मेडिटेशन के थ्रू अगर डालेंगे तो उससे किसी भी तरह की आप व्यसन से, किसी भी तरह की डिजीज से आप बाहर निकल सकते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट हो तो। डॉक्टर साहब, रीगेन की बात आप कर रहे थे, उसके बारे में अगर और कुछ संक्षेप में आप बता सके।
परफेक्ट, हाँ, ये जो सारी टेक्निक है उसका ये लास्ट स्टेप है,
हाँ जी,
कि आपने रीचैनलाइज किया, अभी रीगेन करो। रीगेन मतलब कि पुनः प्राप्त करना।
ओके,
हाँ, और सरल शब्दों में तो यही है कि पहले तो मैं था ही
जी,
जैसे बीमारी हूँ इससे पहले तो मुझे स्नान करने में 10 मिनट ही लगते थे, ये बीमारी हूँ इससे पहले एक ही बार पैसे गिनती करके मैं दे देता था, ऐसा जो भी था, तो वैसा ही मुझे बनना है। ये कोई पूर्व जन्म की बात भी नहीं है।
करेक्ट,
जैसे ना भी ज्ञान में कहते हैं कि भी तुम सतयुग में देवता थे, तो कहते अरे तो समझ में नहीं आता कि मुझे रियलाइज नहीं होता है, परंतु यहाँ पर तो तुम ही थे 4 साल पहले,
बिल्कुल,
कि जो ये कुछ भी नहीं करते थे, है ना, तो उसी को तुम्हें रीगेन करना है।
बेसिकली अपनी जो मेमोरी है उसे रिकॉल करना है,
रिकॉल भी करना है और वो स्टेट को वापस प्राप्त करना है।
बिल्कुल बिल्कुल,
कि भी मैं ऐसा था ही।
जी,
जैसे कुछ होता है ना कि इसमें कि भी बचपन में तुम्हारी फर्स्ट रैंक आती थी, फिर से आ सकती है।
बिल्कुल,
कि भी विषय में तुमने नहीं किया, तो ऐसे ही कि भी मैं तो वैसे नॉर्मल था, अभी भी मैं बन सकता हूँ। और एब्सोल्युटली, ऑल्दो आज भी ना साइकेट्री में इतना मानते नहीं, हमको सिखाया भी गया कि भी 100% ठीक नहीं होते।
अच्छा,
लेकिन होते, अभी हम कितनी एफर्ट करते हैं उस पर है। एक तो मरीज कितनी एफर्ट करता है और डॉक्टर कितनी एफर्ट करता है, दोनों पर उसका आधार है कि वो पेशेंट कितना 100% ठीक हो सकता है। मैंने आगे भी कहा है, मनोचिकित्सा में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अच्छे हो जाते हैं ना, किसको बोलते नहीं कि मैं अच्छा हो गया। क्योंकि उसके पीछे वो स्टिग्मा है। कुछ कुछ लोग बोलते, कई लोग भी नहीं, कई बार भी हम बताते हैं कि भी आप कहो तो कहते नहीं, हम अपना नाम भी बोलेंगे भी हम अच्छे हो गए ऐसे।
बिल्कुल,
इससे तो बहुत कम है, 100 में 1-2% ही है
जी,
कि जो खुल करके बताएंगे कि हम अच्छे हो गए। तो एक तो ये बात, और मतलब वो उसको रिगेन करना है।
डॉक्टर साहब, जितना मुझे इसके बारे में समझ आ रहा है, ये ओसीडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल टेक्निक्स है जिससे हम ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, पता कैसे चले कि मैं, मुझे ये बीमारी है? खास करके जब ये सामने वाला व्यक्ति देखे आपको, जैसे आप सपोज मेरे नेबर हैं, वो मुझे नोटिस कर रहे हैं कि ये हर वक्त रेपिटेटिवली एक ही कार्य कर रहे हैं, तो एनालाइज कैसे करें कि सामने वाले व्यक्ति को ये बीमारी है, ये पता कैसे चले?
जैसे इसमें ना अधिकतर तो पेशेंट खुद बोलते
हैं। अच्छा, उनको खुद को ही रियलाइजेशन
रहती है कि भी मैं ये ज्यादा ही कर रहा हूं।
ओके,
और दूसरे तो बोलते ही है।
करेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल, कि ओसीडी का एक बहुत बड़ा ये इश्यू होता है कि जो उनको सफाई का बहुत होता है ना, कि भी घर में आए है ना, तुरंत बोलेंगे शूज को वहां उतारो, वॉशरूम में जाओ। समझो वो सोफे पे बैठ गए तो पूरा सोफा धुलाई होगा कि तुम कहीं बाहर आए, गंदा हो गया है, अभी सोफा को धुलाई करेंगे।
ओके।
तो बच्चे भी या तो परिवार के सदस्य भी बड़े डिस्टर्ब होते कि क्या कर रहे हो।
करेक्ट। हालांकि मैं मतलब थोड़ा सा इस पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगी, जैसे अभी बहुत बहुत फनी लगी गई सुनने के लिए, पर सपोज मेरी मम्मी है, खास करके जो घर की गृहिणियां होती है, उनकी ये आदत ही होती है कि घर को साफ रखना है, किसी भी चीज को मतलब सही तरीके से रखना है, कोई भी चीज गंदी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। तो एक्सट्रीम में कोई व्यक्ति ये कर रहा है उससे पता चलता है? क्योंकि सफाई तो सभी चाहते हैं, तो ओसीडी जो जिसको बीमारी है वो पता कैसे चले?
सफाई तो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके मदर है, घर को एकदम साफ रखते हैं ना, कि भी सब गए तो सोफा को भी साफ कर दिया है ना, बेडशीट बदल दी, यानी अच्छे से सफाई कर दी। लेकिन आपके फादर घर आएंगे, वो आए और सोफे पे बैठे, तो ऐसा नहीं बोलेगी कि अभी उठो इसकी धुलाई करूंगी। तुम बाहर से आए हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, अभी सोफा भी गंदा हो गया
जी।
अगर गलती से भी बैठ गए तो भी सोफे की धुलाई होगी।
ओके।
या बेड पे बैठ गए तो बेडशीट बदल जाएगी
जी।
हाँ, वो पता चलता है कि एक्सट्रीम है।
बिल्कुल,
है ना, बच्चे डिस्टर्ब होते ज्यादा, तो कई बार है ना कि भी स्पाउस है, पति या पत्नी, वो चला भी लेते कि चलो ठीक है कि भी इसको है, लेकिन जो नौजवान है, बच्चे है, एडोलेसेंट से, वो बड़े डिस्टर्ब होते कि क्या है,
क्योंकि कहीं ना कहीं इंपेशेंस होता है उनके अंदर।
नहीं नहीं, वो भी बार बार हाथ धुला रहे हो।
करेक्ट।
कि ऐसा भी होता है कि भी सब्जी लाए ना, सब्जी की भी धुलाई होगी वो फ्रिज में जाने से पहले। फ्रिज में रखेंगे, उससे पहले सब्जी की धुलाई होगी। वो जो कुछ प्लास्टिक मिला है तो उसको फेंकेंगे पहले
जी।
तो वो पता चल जाता है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब।
और कई बार ऐसा हुआ है, अभी मेरे एक पेशेंट आए थे, उनके हस्बैंड तो जज है
जी।
तो वो बोलते कि नहीं नहीं हमको तो कोई तकलीफ नहीं, क्यों आई? 2-3 बार वो आई, फिर वो खुद भी आए, फिर बोले कि क्या तुमको तकलीफ है, क्यों जाती हो काउंसिलिंग के लिए? उसने कहा आप लोग भी तो मुझे बोलते हो ना कि मैं ज्यादा कर रही हूँ।
करेक्ट
ना, तो कुछ कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको।
बिल्कुल
जी जी।
डॉक्टर साहब, जितना ये पूरा अगर हम सारांश में लेकर के आए, क्योंकि पिछले एपिसोड में भी हमने इसका हाफ श्रृंखला ली थी और अभी आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ एक संक्षेप में बता दें कि ये 5 टेक्निक्स जो है वो किस प्रकार है।
मतलब वो एक ही टेक्निक है, उसके स्टेप्स है। हाँ, वो जो सारे स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स ऐसे है कि एक तो है रिकॉग्नाइज, अर्थात कि उसको समझो
जी,
नहीं ये रिकॉग्नाइज कर, आपने कहा ना कि सजग हो जाओ, जागृत हो जाओ कि मुझे यह तकलीफ है, ऐसा नहीं समझो कि नॉर्मल है
जी।
फिर दूसरा है कि वो जो सारा है उसको रीएवेल्युएट करो,
ओके,
कि भाई ये क्यों हुआ मुझे
जी।
कि जिससे कहीं से भी एंजाइटी शुरू हुई कि जिसने ओसीडी का रूप ले लिया,
बिल्कुल,
कि भी कुछ हुआ, मैं टेंशन में था, कहीं नर्वस था, लाइफ में कुछ मेरे प्रॉब्लम्स थे और ये कुछ बात हुई और फिर वो बढ़ते बढ़ते मेरा इतना बहुत ज्यादा ही हो गया
जी।
है ना, ऐसे उसको पूरा रीएवेल्युएट करो, है ना, आपका जो प्रॉब्लम है वो। फिर कहेंगे रीएट्रिब्यूट कि उसका जो दोष है वो केमिकल्स को दो,
करेक्ट,
उसका दोष है वो आपके ब्रेन के जो पार्ट्स बरोबर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ये कि मेरा हार्डवेयर है ना वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, उसको दोष दो कि वो हार्डवेयर को मुझे ठीक करना है ना, अभी मेरा सॉफ्टवेयर तो ठीक है, ऐसे तो रीएट्रिब्यूट। फिर चौथा है रीचैनलाइज, अब यहाँ कुछ काम करना है। ऐसे ओवरऑल हमने जो टेक्निक डेवलप की उसका थोड़ा विस्तार किया ताकि ना लोग कर पाए। एक जो सिंपल आप नेट में भी देखेंगे तो इसको ये कहा गया है कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक, कि उसको आप एक्सपोज करो जो भी है करो और फिर रिस्पॉन्स करो नहीं, वैसा भी हाथ को धो नहीं, समझो हाथ को टच करो लेकिन अभी धो नहीं उसको
जी,
है ना, तो प्रिवेंट। लेकिन अभी यहाँ पर जो रीचैनलाइज करना ना और इजी है
जी,
कि आपने सब समझा और फिर अभी मुझे हाथ धोने का मन हो रहा है तो मैं जबरदस्ती बैठूंगा ना तो मुश्किल है। एक ग्रुप थेरापी भी होती है कि जिसमें सारे ओसीडी के पेशेंट्स को इकट्ठा करते हैं, अभी 10-15 पेशेंट को इकट्ठा कर लिया और फिर उनको करने नहीं देंगे जबरदस्ती कि तुमको हाथ धोने नहीं देंगे, तो वो थोड़ा सा ना उनके ऊपर प्रेशर आता है, सप्रेस कर रहे हैं। तो रीचैनलाइज में हम ये बोलते हैं कि आप है ना अभी हाथ धोने का मन हो रहा है, चलो मुझे लग रहा है मेरे हाथ गंदे, हाथ मुझे धोने, परंतु वो मुझे नहीं धो, मैं क्या करूं, समझो म्यूजिक सुन,
करेक्ट,
मैं डांस करूं, है ना, मैं कोई अच्छा वीडियो देखने लगूं
जी,
मैं अपने जीवन के बारे में सोचने लगूं, मैं किसी को फोन करूं, अच्छी बातें करूं उनके साथ,
हाँ जी,
नहीं मेरे बचपन के कुछ फोटोज देखने लगूं, यू नो दिस आर ऑल रीचैनलाइजिंग इन डिफरेंट, मेडिटेशन करो,
करेक्ट, तो ये है रीचैनलाइजिंग,
और लास्ट है रीगेन,
करेक्ट,
वो फाइनल है कि भी अभी मैंने वो फाइनल स्टेज को प्राप्त कर लिया, आई एम 100% जैसा आज से 4 साल था पहले वैसा ही हो गया।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें जानी, जिसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि अगर ओसीडी किसी व्यक्ति को है तो सबसे पहले तो उसे डिटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसे एनालाइज करने की ज़रूरत है, और फिर कोई ना कोई तरीके से टेक्निक्स को जानने के लिए डॉक्टर के पास जाए, बिल्कुल भी कतराए नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो आपको ट्रीट ही करेंगे, आपको बेटर ही करेंगे और उस बीमारी से आपको बाहर निकाल देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
थैंक्स, ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने एक नई बीमारी के बारे में जाना जिसके बारे में आज तक हमने कभी सुना भी नहीं था शायद, जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हमने जाना कि किस तरह से हमें ये बीमारी होती है, कैसे इससे बाहर निकलना है, और हमने कुछ टेक्निक्स भी जाने जिसके थ्रू हम इससे क्योर भी हो सकते हैं। अगर आपको या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी की थोड़ी भी भनक पड़ रही है तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने अंदर में इन टेक्निक्स को अगर आप अपनाएंगे तो आप इस बीमारी से बाहर भी निकल सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।